अब तक हमने पढ़ा था कि कशिश और ईशान अपने झूठ में फंसे हुए नजर आ रहे थे। उस पर रजनी ने ईशान से ऐसा सवाल किया जिसका जवाब दे पाना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। कशिश घबराई हुई थी, परेशान निगाहों से ईशान को देखने लगी और रजनी की गहरी निगाहें भी उसके चेहरे पर टिकी थी। ईशान कुछ पल खामोशी से रजनी के सवाल का जवाब सोचता रहा, फिर सवाल पर गहन विचार करने के बाद गंभीरता से बोला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे नहीं, कशिश को मुझसे प्यार है, और उसके पेरेंट्स का प्रेशर था उस पर, जिसकी वजह से वो अपनी जान देना चाहती थी। उसकी जान बचाने के लिए मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया है, और इतनी जल्दबाजी में शादी उसके पेरेंट्स और आपकी जिद की वजह से की। अब आप कहेंगी कि मैं तो किसी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं था, फिर इतनी जल्दबाजी में और कशिश से ही शादी क्यों की? तो आपके इस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूं आपको। इसके बाद ईशान एक पल को रुका, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बोलना शुरू किया, कशिश को इन दो मुलाकातों में जितना मैंने जाना है वो और लड़कियों जैसी नहीं है। वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों का शौक नहीं रखती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों और बातों में खुशियाँ ढूंढ लेती है। इसका दिल भी साफ है, बच्चों जैसी मासूम है ये। उसके मन में कोई छल कपट या स्वार्थ नहीं है। कशिश कभी धोखा नहीं देगी मुझे। फिर अपने वजह से मैं आपको सारी जिंदगी अकेले तो बताने नहीं दे सकता था। आपकी जिद के लिए शादी तो करनी ही थी मुझे। कशिश मुझे अपने हिसाब से ठीक लगी, हम साथ में रह सकते हैं और उसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने का सोच सकता हूँ। बस इसलिए मैंने कशिश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। ईशान ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बेहद सहजता से ये सब बातें कहीं कि एक पल को कशिश भी सोच में पड़ गई। रजनी ने ईशान की पूरी बात सुनी, फिर गंभीरता से बोली, ईशु तेरी बातों पर भरोसा कर रही हूँ, पर याद रखियो कि अगर मुझे कभी पता चला कि ये सब सिर्फ एक नाटक था जो तूने मेरे लिए किया था ताकि मैं शादी कर लूँ, तो उसी पल से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे इतने बड़े धोखे को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, और शादी मैं तभी करूँगी जब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद कशिश तुम्हारा ध्यान रख सकती है और तुम खुश हो उसके साथ। रजनी की बात सुनकर ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक पल वो कुछ कह ना सका, फिर खुद को संभालते हुए सौम्य मुस्कान लबों पर सजाकर बोला, मैं कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा दीदी, मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है। जहां रजनी के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए, वहीं उसका जवाब सुनकर कशिश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। रजनी ने एक नज़र कशिश को दिखाया, फिर अपनी चेयर से उठते हुए बोली, आप दोनों बाहर आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ईशान ने सहमति में सिर हिलाया और कशिश का हाथ थामे उनके पीछे जाने को पलटा, पर ईशान एक कदम भी आगे बढ़ पाता उससे पहले ही कशिश ने उसका हाथ झटकते हुए उसकी हथेली से अपनी हथेली छुड़ा ली। ईशान ने चौंकते हुए पलटकर उसको देखा तो कशिश आंखें छोटी छोटी करके गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रही थी। क्या बकवास कर रहे थे ये तुम अपनी दीदी के सामने? मैंने बताया था ना कि मुझे शादी से डर लगता है। शादी प्यार जैसे शब्दों पर मुझे विश्वास नहीं, ये सब बस दिखावा होता है जो शादी के बाद कहाँ गायब होता है किसी को मालूम नहीं चलता। और शादी तो बस अपने घर में फ्री की नौकरानी लाने के लिए करते हैं जिसके पास दो काम होते हैं, पहला उस इंसान की नौकरानी बनकर उसके और उसके घर के सारे काम करना, और दूसरा उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करके बच्चे पैदा करना। और मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, ना तो मुझे अपनी आज़ादी खोकर किसी के घर की नौकरानी बनना है, ना ही किसी के उपभोग की वस्तु बनकर अपने वजूद को मिटाना है, और ना ही बच्चे पैदा करने की मशीन बनना है। मैं किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। अभी के अभी तुम अपनी दीदी से बात करके ये तमाशा यहीं खत्म करो, नहीं तो मैं जाकर उन्हें सारी हकीकत बता देती हूँ। कशिश इतने गुस्से में थी कि नॉनस्टॉप बोलती ही चली गई और अपना फैसला भी सुना दिया। एक सांस में इतना बोलने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। अभी उसकी गुस्से और नाराजगी भरी निगाहें ईशान पर टिकी थी। जैसे ही वो अपनी बात कहकर चुप हुई, ईशान ने गंभीर लहजे में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब अगर दीदी के सामने सच्चाई आई तो उनके मन को ठेस पहुंचेगी और मुझ पर से उनका विश्वास उठ जाएगा जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दे सकता। इसलिए अब हमें ये नाटक करना ही होगा, पर जो होगा सिर्फ नाटक होगा। भले ही शादी असली होगी, पर सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती। उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और हम दोनों इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे। सारा ब्लेम ही मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुम बिना किसी परेशानी के मुझसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से पूरी आज़ादी के साथ बिता सकोगी। और एक बात मैं अभी ही साफ कर देता हूँ कि पति पत्नी हम बाकी लोगों के लिए होंगे, पर हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम्हें डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं ना तो तुम पर कभी हाथ उठाऊंगा, ना अपने घर की नौकरानी बनाकर रखूंगा, ना तुम पर कोई पाबंदी लगाऊंगा और ना ही तुम पर पति होने का हक जताऊंगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम में तो क्या, दुनिया की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो लड़कों में दिलचस्पी होगी ना, कशिश छूटते ही बोल पड़ी।
उसकी बात सुनकर ईशान की आंखें हैरानी से फैल गईं। आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए अचंभित सा बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मालूम भी है तुम्हें कि क्या बकवास की है तुमने अभी अभी? मतलब क्या हुआ कि मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं तो लड़कों में दिलचस्पी होगी? आई एम अ स्ट्रेट बॉय, फिर मुझे लड़कों में क्यों दिलचस्पी होगी? ईशान हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव चेहरे पर लिए कशिश को घूरने लगा। उसकी बात सुनकर कशिश ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता, तुम्ही ने कहा कि तुम्हें मुझ में तो क्या, दुनिया की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगा कि जरूर फिर तुम्हें लड़कों में दिलचस्पी होगी, पर लड़के से शादी तो नहीं कर सकते, इसलिए सब नाटक कर रहे हो। ईशान की बात सुनकर ईशान ने अपना सिर पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, यू आर टोटली मैड, तुम्हें इतनी सीरियस माहौल में भी मजाक सूझ रहा है, इतनी बकवास बातें आती कहां से हैं तुम्हारे दिमाग में? वहीं से जहां से तुम्हारे दिमाग में आती हैं, और जब तुम शादी जैसे रिश्ते का मजाक कर सकते हो मेरे साथ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कशिश ने तलखी भरे लहजे में जवाब दिया और गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगी। उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब उसके शब्दों में झलक रहा था, और कहीं ना कहीं अपनी जगह वो और उसका गुस्सा दोनों ही ठीक था, और इस बात का एहसास ईशान को भी था, पर अब तीर कमान से निकल चुका था, उसे वापस लेना नामुमकिन था। जो सिचुएशन बनी थी अब उसे जैसे तैसे संभालना था, और इसके लिए सबसे पहले कशिश को समझाना था, जो इस वक्त काफी भड़की हुई थी। ईशान ने अपने बालों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए अपना सिर ऊपर किया, कुछ गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया, फिर कशिश को देखकर गंभीरता से बोला, देखो कशिश, मैं जानता हूं कि शादी कोई मजाक नहीं है, जानता हूं कि जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। शादी और प्यार पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं शादी के बंधन में बंधकर किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता, पर अपनी वजह से अपनी दीदी को सारी जिंदगी तन्हा भी नहीं देख सकता, इसी ही उनके लिए मुझे ये करना ही होगा, और इतने आगे आकर अब पीछे हटना नामुमकिन है। तुम तो वैसे भी मरने की तैयारी में थी, तो इससे तुम्हारा भी तो फायदा है ना, इस नकली शादी से तुम्हें तुम्हारी फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा, फिर कोई तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, मुझसे शादी के बाद भी तुम वैसे रह सकोगी जैसे रहना चाहती हो।
पति होकर भी मैं हक नहीं जताऊंगा तुम पर, और एक बार दीदी की शादी हो जाए तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी, और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस कुछ वक्त नाटक करना है। कशिश ने खामोशी से और बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, ठीक है, मैं शादी करूंगी तुमसे, पर उससे पहले तुम्हें मुझे वजह बतानी होगी कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्यों ये नाटक खेल रहे हो? जब अपनी दीदी से इतना ही प्यार करते हो तो क्यों उन्हें धोखा दे रहे हो, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो? वो मेरी पर्सनल बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इतना कहकर ईशान ने अपना चेहरा फेर लिया। कशिश कुछ पल उसके चेहरे के भावों को गंभीर निगाहों से देखती रही, फिर उसकी हथेली को थामते हुए बोली, तुम भी क्या याद रखोगे कि कितनी दिलदार लड़की से पाला पड़ा था तुम्हारा? तुम भी मेरी तरह महादेव के भक्त हो, बस इसलिए इस नाटक में तुम्हारा साथ दे रही हूं, पर अपनी बात पर से मुकर मत जाना, वरना महादेव की सौगंध, उनका त्रिशूल तुम्हारी छाती के आर पार कर दूंगी। कशिश खुद पर इतराई, फिर उसे आंखें दिखाने लगी। पहले तो ईशान उसकी बात, या यूं कहें कि उसकी धमकी सुनकर चौंक गया, फिर कशिश की बचकानी धमकी और चेहरे के भाव को देखकर अनायास ही उसके लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। महादेव की सौगंध, अपना किया हर वादा निभाऊंगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और जो अपने वचन से मुकर गया तो शौक से महादेव का त्रिशूल मेरे सीने के आर पार कर देना, रोकूंगा नहीं तुम्हें। ईशान की बात सुनकर कशिश खिलखिला उठी। चलो, तुम्हारी दीदी इंतजार कर रही होगी, और रास्ते में कुछ खिला भी देना मुझे, इतनी टेंशन में और इतना बोलने से भूख लग गई है मुझे। इस बार ईशान उसकी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि अब कशिश की खाने की क्षमता का अंदाज़ा लग चुका था उसे। दोनों साथ में बाहर पहुंचे तो रजनी उनका इंतज़ार करती मिली। तीनों पुलिस जीप में बैठे और जीप विश्वनाथ मंदिर के विपरीत दिशा में चल पड़ी, जहां अभिषेक अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। क्या सच में ईशान और कशिश शादी के बंधन में बंध जाएंगे? उनका प्लान कामयाब होगा या किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है उनके साथ?